नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं कनकलता। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, अगर ईरान ने जल्द युद्ध खत्म करने का समझौता नहीं किया तो उसके व्यापक ऊर्जा संसाधनों को तबाह कर दिया जाएगा। स्पेन ने ईरान युद्ध में शामिल अमरीकी विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद किया। भारत ने दक्षिणी लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों पर हमलों की निंदा की। इसराइल की संसद ने खतरनाक हमलों के दोषी फलस्तीनियों को मौत की सजा देने से संबंधित विधेयक पारित किया और भारत की शीतल देवी असाधारण उपलब्धियों के लिए पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 चुनी गई। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा संसाधनों, जल शोधन संयंत्रों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को नष्ट करने की धमकी दी है। उन्होंने युद्ध समाप्त करने के लिए जल्द ही ईरान के साथ कोई समझौता न होने की स्थिति में ये चेतावनी दी है। समाचार चैनल से साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीकी सेना ईरान के खारक द्वीप तेल निर्यात केंद्र पर कब्जा कर सकती है। उधर ईरान ने धमकी दी है कि यदि उसके क्षेत्र पर आक्रमण किया गया तो फारस की खाड़ी में बारूदी सुरंगें बिछा देगा। अमरीका और इसराइल ने कल भी हमले जारी रखे, जबकि ईरान ने कुवैत में महत्वपूर्ण जल और विद्युत संयंत्र तथा इसराइल की तेल रिफाइनरी पर हमले किए। स्पेन ने ईरान संघर्ष से जुड़े अमरीकी विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। स्पेन ने पहले ही अमरीका को पश्चिम एशिया अभियानों के लिए स्पेन में संयुक्त रूप से संचालित सैन्य ठिकानों का उपयोग करने से रोक दिया था। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज इस क्षेत्र में अमरीकी और इजरायली सैन्य कार्रवाई के यूरोप में सबसे मुखर आलोचकों में से एक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येतन से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत नीदरलैंड संबंधों को और मजबूत करने पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर, विशाल जल परियोजनाओं, हरित हाइड्रोजन और प्रतिभाओं के आवागमन जैसे क्षेत्रों में साझेदारी की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी विचार विमर्श किया तथा क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की आवश्यकता पर बल दिया। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बढ़ते अत्याचारों पर प्रमुख मानवाधिकार संगठन ने गंभीर चिंता प्रकट की है। संगठन की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी में 87 गैर न्यायिक हत्याओं और 234 जबरन गायब किए जाने के मामले दर्ज किए गए। इन 87 हत्याओं में 82 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल थीं, जबकि 15 पीड़ितों की पहचान नहीं हो सकी है। कुल हत्याओं में से सबसे अधिक 30 मामले अंधाधुंध गोलीबारी के थे। इसके अलावा 17 मामले लक्षित हत्या और हिरासत में हत्या के थे, जबकि 15 मामले फर्जी मुठभेड़ों के थे। 8 मामलों को कथित मुठभेड़ बताया गया, जबकि ड्रोन हमले और मोर्टार से गोलाबारी का एक एक मामला भी सामने आया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनका मध्य पूर्व दौरा सफल रहा और कई सुरक्षा सहयोग समझौते सम्पन्न हुए, साथ ही कुछ पर चर्चा जारी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर के साथ ऐतिहासिक समझौते किए हैं, जबकि जॉर्डन और कुवैत के साथ बातचीत चल रही है। इसके अलावा बहरीन और ओमान ने भी रुचि दिखाई है। श्री ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन रूस के साथ युद्ध में प्राप्त अनुभव, विशेष रूप से ईरानी ड्रोन से निपटने की विशेषज्ञता इन देशों के साथ साझा करने की पेशकश कर रहा है। उन्होंने कहा कि सहयोग का दायरा वायु रक्षा, रक्षा उत्पादन और ऊर्जा क्षेत्र तक बढ़ाने का लक्ष्य है। यूक्रेन को इसी तरह के सुरक्षा सहयोग की उम्मीद है, जिसमें वायु रक्षा, रक्षा उत्पादन के विकास और ऊर्जा सहयोग पर चर्चा शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि इस क्षेत्र से डीजल की आपूर्ति यूक्रेन की रक्षा आवश्यकताओं और कृषि क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज भारत मंडपम में संपन्न हो रहा है। 7 दिन के इस आयोजन में कल दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यटन तथा संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा की उपस्थिति में समापन समारोह आयोजित किया गया। एक रिपोर्ट।
इस महोत्सव में दुनिया भर की 125 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन किया गया, जो भारत के वैश्विक सिनेमा कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में फिल्म निर्माता अनुषा रिजवी ने ऐसे फिल्म महोत्सवों के महत्व पर अपने विचार साझा किए।
नॉर्मली जब आप सेट पे होते हैं या आप फिल्म बना रहे होते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप अपने पीयर ग्रुप से या आप इंडस्ट्री में लोगों से मिल पाए, बट इस तरह के पैनल या डिस्कशन जब होते हैं तो आप अलग अलग लोगों से नहीं मिल पाती।
फिल्म महोत्सव के दौरान विभिन्न देशों की सिनेमाई यादों को संजोने के लिए शोले और हॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों सहित पुराने फिल्म पोस्टरों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। शिवांग मिश्रा के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
भारत ने दक्षिण लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर हाल के हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि शांति सैनिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतानिनी हरीश ने कहा कि शांति सैनिक कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं और उन्हें संघर्ष क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत तैनात किया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रयासों में अग्रणी रहा है। इसराइल की संसद ने देश के नागरिकों की हत्या के दोषी फलस्तीनियों के लिए मृत्युदंड को मंजूरी देने वाला विधेयक पारित कर दिया है। ये इसराइल के धुर दक्षिणपंथी दलों के लिए बड़ी जीत है। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी विधेयक के पक्ष में मतदान किया। विधेयक में पश्चिमी तट में राष्ट्रवादी लोगों की हत्याओं के दोषी फलस्तीनियों के लिए फांसी की सजा को अनिवार्य बनाने का प्रावधान है। ये कानून इसराइली अदालतों को अपने नागरिकों को मृत्युदंड या आजीवन कारावास देने का अधिकार भी देता है। इसराइली और फलस्तीनी मानवाधिकार समूहों ने इसकी निंदा की है। इसे इसराइल के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिए जाने की आशंका है। तिब्बत के निर्वासित 17वीं संसद का अंतिम सत्र कल भारत के धर्मशाला में संपन्न हुआ। ये बजट सत्र था जिसमें 3,47,50,00,000 रुपए का बजट पारित किया गया। तिब्बत संसद ने तिब्बती राष्ट्रीय ध्वज, प्रतीक चिन्ह और राष्ट्रगान के मानकीकरण के लिए नए नियम भी अपनाए। इसके साथ ही संसद ने चीन के जातीय एकता कानून की निंदा करते हुए इसे नरसंहार कानून करार दिया। सदस्यों ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य राष्ट्रीय प्रतीकों के एक समान और सम्मानजनक उपयोग को सुनिश्चित करना है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार बल।
भारत की शीतल देवी को विश्व तीरंदाजी संघ ने पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 चुना है। जम्मू कश्मीर की शीतल देवी के जन्म से ही हाथ नहीं है। वे दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला पैरा तीरंदाज बनी। शीतल ने पेरिस पैरालंपिक में मिश्रित टीम कांस्य पदक और एशियाई पैरा गेम्स और एशियाई चैंपियनशिप में व्यक्तिगत रजत पदक भी जीते हैं। उधर छत्तीसगढ़ में जारी खेलो इंडिया जनजातीय खेलों के 7वें दिन आज रायपुर में तीरंदाजी और फुटबॉल के मैच होंगे। कुश्ती की प्रतियोगिताएं सरगुजा में आयोजित होंगी। फुटबॉल में महिला वर्ग के दोनों सेमीफाइनल मैच आज खेले जाएंगे। महिला हॉकी में मिजोरम और ओडिशा फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष वर्ग का फाइनल झारखंड और ओडिशा के बीच खेला जाएगा। पदक तालिका में कर्नाटक पहले, ओडिशा दूसरे और अरुणाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर हैं। ये खेल 3 अप्रैल तक चलेंगे। इसमें 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3,000 से अधिक एथलीट भाग ले रहे हैं। इसके अलावा आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हरा दिया। कल रात गुवाहाटी में खेले गए मैच में चेन्नई ने राजस्थान को 128 रन का लक्ष्य दिया। राजस्थान रॉयल्स ने मात्र 2 विकेट खोकर 13वें ओवर में मैच जीत लिया। वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान के लिए 17 गेंद में 52 रन की धुआंधार पारी खेली। नांद्रे बर्गर को मैन ऑफ द मैच चुना गया।
देश भर में आज 24वीं और अंतिम जैन तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृहमंत्री अमित शाह ने देशवासियों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, अगर ईरान ने जल्द युद्ध खत्म करने का समझौता नहीं किया तो उसके व्यापक ऊर्जा संसाधनों को तबाह कर दिया जाएगा। स्पेन ने ईरान युद्ध में शामिल अमरीकी विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद किया। भारत ने दक्षिणी लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों पर हमलों की निंदा की। इसराइल की संसद ने खतरनाक हमलों के दोषी फलस्तीनियों को मौत की सजा देने से संबंधित विधेयक पारित किया और भारत की शीतल देवी असाधारण उपलब्धियों के लिए पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 चुनी गयी।